ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सहकारी संस्था का नियमन करने के लिए नियामक इकाई की स्थापना की जाएगी, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का कथन। सरकारी सेवा लेने के लिए नागरिकता के साथ ही राष्ट्रीय परिचय पत्र भी प्रचलन में लाने का सरकार का निर्णय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने ली पद तथा गोपनीयता की शपथ। 14 सदस्यों की मंत्रिपरिषद का हुआ गठन। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार चुना गया नेता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि नेपाल को सूचना प्रविधि के हब के रूप में विकसित करने के लिए आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में सूचना प्रविधि दशक की घोषणा के साथ साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। डिजिटल रूपांतरण के अभियान में क्रियाशील आईसीटी फाउंडेशन द्वारा आज काठमांडू में आयोजित डिजिटल नेपाल कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया कि बजट में 10 साल में सूचना प्रविधि संबंधित 30 खरब का सेवा निर्यात और 5 लाख प्रत्यक्ष और 10 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि स्वदेश में निर्मित सॉफ्टवेयर का प्राथमिकता के साथ सार्वजनिक निकायों में उपयोग किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। मौके पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि सूचना प्रविधि क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत और संरचनात्मक व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आईटी संबंधी विधेयक और डिजिटल पूर्वाधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने के क्रम में है। आज ही सहकारी केन्द्र नेपाल के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि सहकारी क्षेत्र की समस्याओं को संबोधित करने के लिए सरकार नीतिगत और व्यावहारिक समाधान के विभिन्न उपायों को अपनाती आ रही है। उन्होंने बताया कि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाओं का नियमन करने के लिए नियामक निकाय की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए नैतिकता और ईमानदारी का सम्मान करने के संस्कार को आवश्यक बताया। आज सुबह शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में अंतरव्यवस्थापिका मंच नेपाल की सभा के निष्कर्ष सहित घोषणा पत्र लेते हुए राष्ट्रपति पोर्टेल ने कहा कि नैतिकता और ईमानदारी का सम्मान करने का संस्कार जितना विकसित होगा लोकतंत्र उतना ही सुदृढ़ होगा। इस बात का जिक्र करते हुए कि राजनीतिक दलों की भूमिका जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, राष्ट्रपति ने कहा कि दलबंदी कभी कभी मुश्किलें खड़ी कर देती है, कमजोर लोगों को अपेक्षित न्याय को मार देती है, इसलिए निश्चित सीमा और मर्यादा में रहकर ही दलों को कदम उठाने चाहिए। बता दें कि राष्ट्रपति पोर्टेल शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मौके पर सभामुख देवराज घिमिरे ने निर्वाचन के बाद 3 सभाओं के निष्कर्ष और घोषणा उन्हें हस्तांतरित किए थे। सरकार ने सरकारी सेवा लेने के लिए नागरिकता के साथ साथ राष्ट्रीय परिचय पत्र को भी प्रचलन में लाने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की कल की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने बताया कि कुछ सेवाओं में राष्ट्रीय परिचय पत्र से भी सेवा लिए जा सकने के आशय के साथ नेपाल राजपत्र में सूचना प्रकाशित करने का निर्णय हुआ है। उन्होंने साफ किया कि नागरिकता प्रमाण पत्र प्रयोग होने वाले सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य करने की सरकार की तैयारी जरूर है, लेकिन फिलहाल पहले चरण में परीक्षण के रूप में महज कुछ क्षेत्रों में ही राष्ट्रीय परिचय पत्र को प्रयोग में लाने की बात है। इसके अलावा कई अन्य निर्णय मंत्रिपरिषद बैठक ने किए, जिनमें जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली 2081 को स्वीकृत करने, ज्येष्ठ नागरिक संबंधी प्रथम संशोधन नियमावली 2081 को स्वीकृत करने, राष्ट्रीय योजना आयोग के रिक्त सदस्य पद पर डॉ रमेश प्रसाद सिंह को नियुक्त करने लगा निर्णय शामिल हैं। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने आज पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में आज दोपहर को आयोजित समारोह में प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भंडारी ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री सिंह को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी बीच मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करते हुए मुख्यमंत्री सिंह ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेलकूद को प्राथमिकता में रखते हुए 9 महत्वपूर्ण निर्णय किए। बता दें कि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केंद्र और नेकपा एकीकृत समाजवादी के समर्थन में जनमत पार्टी के सिंह ने खुद को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए आज ही प्रदेश प्रमुख के समक्ष दावा पेश किया था और वे मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि सूचना प्रविधि आईटी क्षेत्र को सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघ के दूसरे महाधिवेशन एवं तीसरी साधारण सभा का आज काठमांडू में उद्घाटन करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS लागू करने के निर्णय से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि देर से ही सही MDMS लागू किया जाएगा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री हित बहादुर तामांग ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हवाई टिकट में लगाए गए वैट और अन्य अनावश्यक कर हटाने की दिशा में सरकार जुटी हुई है। आज नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर्स एंड ट्रेवल्स की 57वीं वार्षिक साधारण सभा में उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास और प्रवर्धन के लिए इस क्षेत्र के विभिन्न करों को हटाने के विषय में विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता पर गंभीर न होना अच्छी बात नहीं है। आज चितवन में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता के संबंध में गंभीर होकर स्थिरता कायम करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामी छाने ने एक महीने के भीतर औषधीय और औद्योगिक प्रयोजन के लिए गांजा उत्पादन खुला करने के हिसाब से नियमावली बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की आज हुई बैठक में उप प्रधानमंत्री लामी छाने ने कहा कि नेपाल में गांजे को व्यावसायीकरण करने के उद्देश्य से बजट आवंटित किया गया है। सार्वजनिक लेखा समिति ने सीमांकन नक्शांकन और अभिलेखीकरण के लिए आपसी समन्वय एवं आवश्यकता के आधार पर देशभर में फिर से जमीनों की नपाई करने का निर्देश किया है। समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और तथ्यांक में शुद्धता कायम करने के लिए भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय और माथहत के निकायों को निर्देश किया है। ये जानकारी समिति के सभापति ऋषिकेश पोखरेल ने दी। समिति की आज की बैठक ने सार्वजनिक सरकारी सामुदायिक और गुठी की जमीनों के सीमांकन सहित नक्शांकन अभिलेखीकरण अद्यावधिक करने का भी निर्देश किया है। समिति ने जमीनों के अभिलेखीकरण प्रयोग और संरक्षण में तीनों तहों और संबद्ध निकायों के बीच नीतिगत तथा समन्वयगत स्पष्टता क्रियान्वित करने का सरकार को निर्देश किया है। इसी तरह सार्वजनिक सरकारी गुठी सामुदायिक जमीन संबंधी पुराने अभिलेख का संरक्षण करने का भी निर्देश किया। समिति ने सार्वजनिक तथा सरकारी जमीन का किसी भी कारण दुरुपयोग अतिक्रमण कब्जा व दुरुपयोग करने वालों के ऊपर यथाशीघ्र कार्यवाही करने का भी निर्देश किया है। निश्चित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सार्वजनिक तथा सरकारी जमीन का उद्देश्य से हटकर प्रयोग होने अनधिकृत रूप में कब्जा होने व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में पंजीकृत होने लगात विषयों पर समिति का गंभीर ध्यान आकृष्ट होने की बात बैठक ने कही है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ने उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन 2075 साझा किया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर आज इस प्रतिवेदन को साझा करते हुए शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सुमना श्रेष्ठ ने कहा कि प्रतिवेदन के सकारात्मक तथा सांदर्भिक पक्ष को क्रियान्वयन में ले जाने और समसामयिक विषयों को परिमार्जित करने का काम किया जाएगा। इसी जेठ 1 गते को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने यह प्रतिवेदन मंत्री श्रेष्ठ को हस्तांतरित किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के 2075 आषाढ़ 32 गते के निर्णय से तत्कालीन शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल की अध्यक्षता में 24 सदस्यों वाले गठित आयोग ने विक्रम संवत 2075 माघ 1 गते को तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन सौंपा था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुराने संसद संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आज सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में NDA के 13 दलों के नेता शामिल हुए थे। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली लोकसभा होगी। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमार स्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समर्थन का ऐलान किया। बता दें कि मोदी 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। बताया जाता है कि मोदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। बता दें कि भारतीय लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। ये बहुमत के आंकड़े यानी 2072 से 32 सीटें कम हैं। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। ज्ञात हो कि गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी हैं। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी संस्था का नियमन करने के लिए नियामक निकाय की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। सरकारी सेवा लेने के लिए नागरिकता के साथ ही राष्ट्रीय परिचय पत्र भी प्रचलन में लाने का सरकार का निर्णय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने ली पद तथा गोपनीयता की शपथ। 14 सदस्यों की मंत्रिपरिषद का हुआ गठन। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार चुना गया नेता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।